نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کا دل جو ہے اس قدر حسین، خوبصورت، جمیل، رنگین اور وہ زیبائش عطا فرمائی ہے کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی. اس قدر حسین ہے مومن کا دل کہ اس کے ایمان کی جب روشنی نکلتی ہے تو عرش تک پہنچتی ہے روشنی، بے انتہا صلاحیتیں اور بے انتہا مقامات، عروج، منزلیں، درجات اور طاقتیں اللہ پاک نے ایک مومن کے دل کے اندر عطا فرمائی ہیں. مجموعہ ہے حسن کا، جمال کا. لیکن دنیا کی گندگی اور بےہودگی، فضولیات، جیسے کہ آدمی بہت ہی حسین اور جمیل قیمتی کپڑا پہن لے اور کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں بدبو ہو، گند ہو، کیچڑ ہو، تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کپڑے کو بچانے کا کوئی بہت ہی بڑا انتظام ہو تو کپڑا بچے گا، یا پھر اس کپڑے کے ساتھ وہ اتنا گندا ہو جائے گا، اتنا ملوث ہو جائے گا وہ کہ بدو بن جائے گی اس کے کپڑے کے اندر، اس کی ساری آسائش ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ مومن کا جو دل ہے، خوبصورتی حسن جو ہے، اور جو اس کا میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا عرض کی ہے، اس کا درجہ ہے اس دنیا کی گند میں اور فضولیات میں، دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اس کی حفاظت کی جائے تو اس کی قیمت برقرار رہتی ہے، یا پھر وہ ہے کہ اس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ گند کا ڈھیر بن جاتا ہے. ساری صلاحیتیں جو اللہ پاک نے مومن کے دل میں رکھی ہیں وہ ساری ضائع ہو جاتی ہیں. الحمدللہ، اللہ کے فضل سے تمام سننے والے حاضرین جتنے بھی ہیں سب مومن ہی ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے دل بھی وہی ہیں جو اللہ نے جس کی تعریف فرمائی ہے قلب مومن کی. لیکن ہم اگر ایک نظر مارے ہیں پورے ماحول پر تو کس قدر مختلف دل نظر آتے ہیں. وہ صلاحیتیں کہیں نظر نہیں آتی، وہ چمک کہیں نظر نہیں آتی، وہ نور کہیں نظر نہیں آتا. پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے قلوب کی حفاظت نہیں کی اور ساری صلاحیتوں کو ہم نے برباد کر لیا. اللہ نے جو دی تھی، سارے نور کو ہم نے ضائع کر دیا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا، اور نہ ہی ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ انسان کا دل اور قلب بہتر ہو تو مقام بہت بلند ہو جاتا ہے اس کا. ایسی ایسی اللہ پاک نے اس میں صفتیں رکھی ہوئی ہیں, انعامات رکھے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. اس قلب کے اندر جو اچھا صحیح اور صاف دل ہوتا ہے, جو انسان حفاظت کرتا ہے اس دل کی, محنت کرتا رہتا ہے, تو اللہ کے جہاں اس میں انعامات ہیں, اس میں ایک ٹاپ انعام اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں اس دل کو. اور حقیقت یہ ہے اسی صفت کی وجہ سے انسان پہچان سکتا ہے کہ میرا دل اچھا ہے, میں اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں. ظاہر سے نہیں پہچان سکتے آپ. دل کے اندر جو صفت اللہ پاک نے رکھی ہے وہ صفت ظاہر کر دیتی ہے انسان کو کہ یہ بہت اچھا ہے یا برا ہے. وہ اتنی زبردست صفت ہے جو اللہ تعالیٰ انعام میں خاص رکھا ہے اچھے دل والوں کے لیے, جن کے دل اچھے ہو جاتے ہیں محنت کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ وہ انعام عطا فرماتے ہیں اس کو. بہت زبردست انعام ہے, غالب تمام خصوصیات قلب پر, جتنی بھی اللہ نے خصوصیات رکھی اس پہ غالب ہے. اب وہ جو انعام ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے, ایک چیز دل کے اندر اتر جاتی ہے, وہ ہے شفقت اور رحمت. اللہ کی شفقت اور رحمت, رحم یہ جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ دیتا ہے. جس قدر کسی انسان کا دل صاف اچھا ستھرا ہوگا, اسی قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر رحم اور شفقت کا جو جذبہ ہے زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں, خود بخود وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. پہچاننے کے لیے اب اچھا اور برا آدمی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کے اندر رحم اور شفقت ہے اور کس کے دل سخت ہوئے ہیں, ان کے دل میں رحم آتا ہی نہیں. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحم کرنے والا جو ہے وہ جنتی ہے. کیا خوبصورت بات. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول جانور پر, ان کے جانور پر بھی ہر ذیب شعور پر جس پر وہ رحم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا. یہ نام کس کا ہے؟ جس کے دل اچھے ہوتے ہیں. عام آدمی نہیں لے سکتا, جس کے دل خراب ہوں گے اس پہ رحم کا کیا پتہ, اس کیا پتہ کہ رحم کیسے کرنا ہے, کسی پہ شفقت کیسے کرنی ہے. ریورس ہو جاتا ہے, جیسے جیسے یہ جذبہ بڑھتا ہے رحم اور شفقت کا, آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, قرب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور جیسے جیسے یہ دور ہونا شروع ہوتا ہے, جانور سے بدتر بدترین شخصیت دنیا کے اندر قائم ہو جاتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ایسے کیسے انسان ملیں گے کہ جنہوں نے انسانوں کو کس طریقے سے مارا ہے, سروں کی امبار لگا دیے قتل کے بعد. انسانی ہے لیکن کیا ہے کہ دل جو ہے اس میں سے رحم نکل جاتا ہے آدمی کے. جب رحم نکلتا ہے پھر مذہب شذہب کوئی کام نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی حدیث سنیں, کتنی پیاری حدیث ہے, کہتے ہیں میری امت میں سے جو لوگ ہیں, میری امت میں سے لوگ نماز کی زیادتی اور عبادات کی زیادتی کی وجہ سے نہیں جائیں گے بلکہ سلامتی ہے قلب کی وجہ سے جائیں گے. تو یہ کوئی اچھائی اور برائی کی نشانی نہیں ہے مومن کی, یہ نشانی نہیں ہے کہ منہ اس کا سوجا رہے اور سجدوں میں پڑا رہے. منہ سوجا رہے کبھی مسکراہٹ بھی انسان کے چہرے پر نہ ہے, کسی کی محبت بھی کسی نہ دیکھے, اور سجدوں کو ماسٹر ہوں, قرآن کو پڑھنے میں ماسٹر ہوں, نمبر لگائے ہوں ہر جگہ پر. اللہ کے نبی نے فرما دیا کیونکہ یہ جو ساری عبادات ہے سلامتی ہے قلب کے ساتھ نہیں ہے, دل پہ محنت نہیں ہے اس کی. اگر دل پہ محنت ہوتی تو سب سے بڑی اللہ کی نعمت نظر آتی ہے, وہ رحمت اور شفقت کی تھی. اتنی بڑی چیز ہے شفقت. آپ یہ دیکھیں کہ پوری انسانیت, پوری دنیا اور پوری زندگی کو یہ کنٹرول کرتی ہے. ادنا سی اللہ تعالیٰ نے, یعنی ایک جھلکی ہے یہ بتا رہا ہوں اللہ کی طرف سے اس نعمت کی, کس پر؟ رحم کی, ماں کی شکل میں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رحم उसके अंदर वदियत ना करते, रहम और शफकत तो ना डाला होता, आज माँ पालती आपको, आप पल जाते। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने उस रहम के जज्बे को डाला उस माँ के अंदर, और अदना है अभी, ये तो बहुत अदना है, बहुत वास्त चीज़ है अल्लाह, ये रहम और शफकत बड़ी वास्त चीज़ है, तो अदना से हिस्सा है जो माँ के अंदर डाला है। तो उसके कमाल आप ये देखें कि जैसी इतनी शफकत होती कि जैसे बच्चा पैदा होने के बाद माँ के पिस्तान पे मुंह रखता है, वो तो दूध के कहीं उसने वो अंदर भैंस नहीं बांधी हुई, ये गाय नहीं बांधी हुई, ये बकरी नहीं है कि जहाँ चौ के कहेगी आज अब दूध पी ले, नहीं, जैसी डाली वो क्या काम करती है, शफकत काम करती है, रहम काम करता है, वो इतना काम करता है कि उसका जो जिस्म का खून है वो एकदम दूध में बदल जाता है। मुझे कोई दुनिया की कोई फैक्ट्री दिखाए ना ऐसा, मुझे कोई फैक्ट्री दिखा दे कोई दूध खून डालता है उसमें खून को कन्वर्ट करके वो दूध बना देता है, मैं तो नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो मुझे बता दें, मैंने आज तक नहीं सुना। और बहुत से तरीकों से दूध बनते हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खून से वो दूध बना कर दिखाए मुझे, वो एक ही चीज़ बना सकती है, अल्लाह की तफसीर के दिल में रहम होगा। देखिए कितनी बड़ी गजा बन गई उस बच्चे की जिंदगी, बन गई उसमें सारे विटामिन सब कुछ। और ये नहीं कि भाई कोई बहुत ही सेहतमंद औरत है, आप जाके देखें देहातों में, गरीब शहरों में, गरीब मुल्क में, अंदर आधी रोटी भी नहीं मिलती माँ को, आधी रोटी भी नहीं मिलती, उसके अंदर क्या विटामिन होंगे बेचारे के अंदर, क्या खून होगा, क्या उसके अंदर जान होगी, हड्डी में से क्या निकलता होगा। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहम देखें, उस रहमत से बच्चे को जवान कर देती है,
सुभान अल्लाह,
कितनी बड़ी बात है, एक झलक है रहम की। बाप में अगर शफकत पैदा ना करता, बाप रखता किसी बेटे को घर, नाफरमान से नाफरमान बेटा बदमाशी करके भी आता है तो बाप बाप जो है नीचे निगाह कर लेता, कहता चल मैं माफ़ कर, आंदाना ये करना काम, क्या चीज़ है ये शफकत। अगर ये शफकत निकाल दें आप माँ बाप से, क्या बन जाए दुनिया, कुछ सोचें आप, अजीब खड़ा बन जाए, कहाँ से दूध बच्चे को मिले, कौन पाले, कौन रात को उठ के लोरी दे, कौन उसको अपने सीने के साथ लगाए, कौन बीमार बच्चे के साथ साजी साजी रात को और जागे, ये कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह ताला ने एक चीज़ दिखाई है कि देखें मैं इस तरह इंसान को जब रहम दे देता हूँ तो उसकी पोजीशन ऐसे हो जाती है कि उसके जिस्म का खून भी जो है वो दूध में तब्दील हो जाता है। तो जब इंसान अपने कल्ब को संभालता है, सलामती कल्ब करता है, कल्ब पे मेहनत करता है, कर तो संवारता है, किससे होता है कि जैसे गंदा कपड़ा होता है, अच्छा कपड़ा है और वो गंदी जगह पर गया तो हम दामन बचाते हैं, छींट ना पड़े, ये ना बचाते हैं ना। तो जिन लोगों ने अपने कलूब को इस तरह बचाया दुनिया की गंद से, दुनिया की खराफात से, दुनिया तो गंदी चीज़ है ना, इससे अपने दिल को बचा के रखा, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसमें क्या चीज़ डालता है, शफकत पर रखना देता है। और जब शफकत आ जाती है तो इतना अजीम सिफ्त उसमें आ जाती है, इतनी अजीम सिफ्त आ जाती है, अल्लाह सुबहान तला कहता है कि इस शफकत की वजह से पूरी कायनात उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। अल्लाह खुद कहने लगता है वाह सुबहान अल्लाह कि तू जमीन पर रहम फरमा रहे, आसमान पर मैं तेरे लिए रहम फरमाऊंगा, आज तू मेरी मखलूक को रहम से देख रहा है, तू मेरे पास आएगा तो मेरा रहम भी देखना, मैं तेरे साथ कैसा मामला करता हूँ। मिलता किसको है, जो अपने दिलों को समझते हैं। हम तो आज हमारे नज़दीक तो ये दिल की मेहनत कोई चीज़ नहीं है, दिल की तरफ तवज्जो भी नहीं है हमारी, आँख की बिनाई ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन भागते हैं कि आँख की हमारा ऑपरेशन कर दें, ऐनक लगा दें, दांत में दर्द हो तो दांत नहीं लगवाते हैं, उंगली हाथ से उंगली कटे उसको दिलाते हैं, ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, गुर्दे जिगर सब कुछ मिल जाती है। काश जिससे इंसान इंसान बनता है, जिससे इंसान इंसान बनता है, अल्लाह का कुर्ब मिलता है दिल, उसकी तरफ कोई मेहनत नहीं करता, पता नहीं क्या क्या वजह है, हम क्या सोचे। और हालांकि हमारे करेक्टर सामने कि हम मुसलमान ऐसे थे, मुसलमान का दिल तो मैंने बताया कैसा है, क्या शान है मुसलमान की। बस आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला ने बुखारी मुस्लिम की हदीस है तो कहते कुछ अरबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर, सहाबा बैठे हैं मजलिस कायम है, तो अरबी आए बुद्ध लोग आके जो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक सवाल किया, अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बच्चों के बोसे भी लेते हैं, देखा होगा ना नबी पाक ने शफकत और रहमत बच्चों के साथ आपको तो पता ही बच्चों के साथ क्या, तो दुनिया कायनात के साथ उनकी रहमत का वाला मामला था। हर आदमी के जानवर क्या इंसान, हर आदमी का आपकी शफकत से महरूम ही था। तो फिर खासतौर पर जो वो नज़ारा जो हसन हुसैन के साथ होता था आपका सलम सलाम मोहब्बत का, तो सारी दुनिया देखती थी कि हर कानून तब्दील हो जाता था। सिजदे में तो सिजदे से उठ ही नहीं रहे, ऊपर खेले जा रहे हैं, उन्होंने बना ली सवारी, बना ली घोड़ा, बना लिया एक पेट के नीचे से निकले एक ऊपर से जा रहे हैं। अजीब सीन देखे आप सिजदे में, दोनों रेस लगी, एक नीचे से जा रहे ऊपर से आ रहे, एक ऊपर से आ रहे एक नीचे से जा रहे, दोनों खेल रहे हैं, एक आस जम मार रहे हैं। आपने बस पड़े रहे इसी तरह सिजदे के, लंबा कर सीधा कर दिया, नहीं हटाया। प्यास लगी इमाम हुसैन को, सुभानअल्लाह, पानी नहीं दिया, कहते हुसैन इधर अपनी जबान मुबारक मुंह में डाल दी, चूसना शुरू किया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या चश्मे निकलेंगे जन्नत के, मुझे होता है सराब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शफकत देखी, आज देखें हमारा बच्चों के साथ क्या हाल है, सबसे ज्यादा सख्ती बच्चों से ही करते हैं। वो क्या होता है, उनके जहन में बैठ जाता है कि मेरा बाप बड़ा सख्त था। मैं इंटरव्यू लिए मैंने लोगों के कि हमारी जिंदगी बिगाड़ने वाले हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा कभी ख्याल नहीं किया, हमें कभी समझा नहीं, हम बात करते तो सख्ती झाड़ देते थे, बैठा आराम से, कोई मोहब्बत वाला मामला नहीं, कभी सीने से लगा के देखा नहीं, कभी उनके साथ खेल के नहीं देखा, कभी साथ उनके साथ मस्ती नहीं की, उनको टाइम नहीं दिया, उनके साथ मोहब्बत नहीं की, बस सीधा केड़े नंबर था जूता करना, सब जूतों की जबान से बात कर ली। बच्चों की तो फितरत खेल तमाशा तोड़ फोड़ बदमाशी मुकम्मल है, शैतान के साथ खेलते हैं वो, तो जंप भी मारेंगे, शीशे भी तोड़ेंगे, वो भी तोड़ेंगे, तो सख्त इनके माँ बाप होते हैं, बच्चे को नुकसान हो जाता है ना, वो बच्चा डर जाता है, हल्का के ये भी होता है कि डरने के बाद वो घर छोड़ जाता है, कि हफ्ते मेरे पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, ये है ही नहीं हमारी हिस्ट्री, घर से भाग जाते हैं बच्चे। जैसे जब बड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर बड़ा क्लेम करते हैं, ये ओ तुम ऐ नहीं पेचदा, मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे ये की है, मैंने बोला की है, फिर बात करते हैं, वजह शफकत ही नहीं है, दिल ही नहीं मना। ऐसी ऐसी अब आप जरा नजर मार के देखें, हर खराफात को हमने बर्दाश्त कर लिया, हर मुश्किल को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हर चीज यानी उलट पुलट हो गया हमारा सारा माशरा इस्लाम का, कोई देश नेश नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहे हैं, ये नहीं करते। कभी ऐसा हुआ है कि इंसान को कोई बीमारी हो वो खामोश बैठेगा, फलों जाएगा, और ये खुद साइंस मेडिसन, जब किसी बीमारी को निकलता है फ्लू भी आ जाए तो वो एक काम करते हैं, उस पर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च करके उसके रीजन को फाइंड करते हैं कि भाई फ्लू क्यों हो रहा है, इसके जरासीम कौन से हैं, लेबॉरेटरी में जाती हैं चीज़ें बाकायदा देखा जाता है, उसके रीजन उसके तह तक पहुँचते हैं, बुनियाद कहाँ से, फिर उसके मुताबिक मेडिसन बनाते हैं, उसको किस तरह मारा जाए, करते हैं या नहीं। जब रीजन पकड़ी जाती है तो वो फिर बीमारी पकड़ी जाती है। आज जो हमारे माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे में खासतौर पर, इस्लाम के अंदर जो आज हमारे हालात हैं, आप ये देखें, कत्ल गारत खून बीमारी मार धाड़ अपने प्राय, यानी जब जानवर होता है ना जानवर, उसको ये पता नहीं होता कि मेरा बच्चा है या किसी का बच्चा, अपने बच्चे को खा जाता है, भूख लगती है ना जानवर अपने बच्चों का शिकार कर लेता है, वो नहीं देखता, सांप अपने पैदा किया और खा गए, कोई जोर नहीं होता कि मेरा बच्चा पैदा किया। आज ऐसा नहीं है, एक बाप एक बेटा बाप को खड़ा होकर गोलियां मार रहा है, मां को गोलियां मार रहा है, थोड़ी सी बात पर किसने मेरी ये बात नहीं मानी, ली गोली मां खत्म। ये कभी सोचा इसकी वजह क्या है, कोई नहीं सोचता। अपने दुनिया में हम मस्त हैं, हमें पता ही नहीं हमारा मजहब क्या था, हमारे नबी सुन क्या हम सिखाने आए थे, हमारे अखलाक क्या था हमारा, और जैसे जैसे हम इन चीजों से दूर हो रहे हैं, किस चीज से, दिल से, हमने दिल की तरफ नजर ही नहीं मारने, हमें पता ही नहीं कि दिल इसकी वजूहात क्या है, कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता कि रीजन इसकी ये है, किसी लेबॉरेटरी में डालें इसको, कौन सी लेबॉरेटरी हो सकती, कुरान और हदीस की लेबॉरेटरी में इसका इलाज सर्च करें, यह है वजह क्या, तो सबसे बड़ी लेबॉरेटरी तो यह ना हमारे पास, उसके अंदर खंगालें तो आपको साफ वहां से आवाज नजर आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसका दिल सलामत होगा उसकी जिंदगी सलामत होगी, खुद समझ जाए। अल्लाह ने कहा कि रहम ये नहीं है कहते हैं रहम करने वाला जन्नत में जाएगा। और फिर तशरीफ फरमाई, देखें लेबोरेटरी बता रही है कि रहम ये नहीं है तू अपना ख्याल करना शुरू कर दे, अपने में रहम आना शुरू हो जाए कि मैंने अभी रोटी नहीं खाई, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने फला नहीं किया, मैंने मुझे ठंडा चाहिए, मुझे गर्म चाहिए, मुझे हीटर चाहिए, अपने पे रहम नहीं फरमाया। कहता रहम की तारीफ ये है जिसके बारे में फरमाया जन्नत में जाएगा, अपने पे नहीं दूसरों पे जो रहम करेगा। इसको मैं सर्दी से कैसे बचाऊं, इसकी गर्मी का इलाज मैं कैसे करूं, इसकी भूख का इलाज मैं कैसे करूं, इसके फलां का इलाज कैसे करूं, ये यानी जो बताने आए थे नबी अकरम जो तैयार की थी कौम वो तो ये थी, कौम तो ये थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़ा है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस बात को कि रात का वक्त था, वो गश्त मार रहे थे, क्या कर रहे थे, गश्त मार रहे थे, गश्त कर रहे थे देखने के लिए लोगों को, ये तो उनकी ड्यूटी थी। देखा था दूर एक फासले पर किन को काफिला है, मतलब ये नहीं कि यहूदी हैं मुसलमान हैं कौन है, इससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो क्या है काफिला देखा, तिजारी काफी था, काफी जिस जाते हैं ना काफिले तिजारत वाले, तो आपने देखा कि काफिला गुजरा यहाँ से उसमें माल वाल होगा, तो आपने सोचा कि चलो कोई हमें क्या जरूरत जाने दें, लेकिन क्या किया आप पीछे चले उनके चलना शुरू हो गए। तो अभी चले थे अंधेरे से देखा अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वे कौन से निकले आ रहे हैं, वो दोनों टक्कर हो गई, इसके तू कहाँ जा रहे, कहते आप कहाँ जा रहे हैं, उनके मतलब इसका कहते मैं भी इसी काफिले को देखने आया था, ये देख तरबियत कहते तुम क्यों देखने आए थे, कहते मैंने सोचा ये बेचारे मुसाफिर हैं जा रहे होंगे कहीं, तो हमने सोचा मैंने सोचा अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैं इस काफिले की हिफाजत करूँ सारी रात बैठ कर, ये है मान लो हंसत कह रहे कि मैं तो खुद ही सोच के आया था, कहते आप दोनों करते हैं हाय हाय अल्लाह। उन्होंने पूछा है कौन है, यहूदी हैं सिख हैं ईसाई हैं क्या मजहब है क्या करते हैं, मर दो इनको मौका अच्छा बताया किसी ने, मुझे बताया क्या किया उन्होंने, बैठ के सारी रात बैठे रहे दोनों कि कोई जानवर ना आए, कोई इंसान को चोरी ना करे, कोई इसको तंग ना करे, अंदाजा लगाए सारी रात। जब फजर का टाइम हुआ तो हजरत उमर बोले कहते भाई अगर मुसलमान हो तो हमारा नमाज का टाइम है, उठो नमाज पढ़ लो हम चले आप, इत्तेफाक से मुसलमान ही थे, फजर के वक्त अपने चल पड़े, कोई किसी पे एहसान नहीं, कोई वैसी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, क्यों उनकी तरबियत यही थी, उनका इस्लाम ही ये था, उनके कल्ब की साखत यही थी, रहम था शफकत थी, तभी तो इतने बड़े इंसान थे, इबादत से वजह थोड़े थे, नमाजों की वजह थोड़ी थी, वो तो अब भी देख लें आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले तो बड़े बड़े हैं, ऐसी क्या बात है, वजह ये थी कि उन्होंने इस गंद से दुनिया गंद अल्लाह ताला की दुनिया टेस्ट ये इंसान का कि तुमने इस गंदी दुनिया के अंदर रहना है, लेकिन रहना कैसे है, तुम्हारे जिस्म हाथ गंदा हो जाए इससे मिट्टी लग जाए सब सब कुछ बेशक खराब हो जाए लेकिन दिल को गंदा ना होने देना, डस्ट उड़ेगा इसका समान में उड़ेगा डस्ट इसका जो तुम्हारे दिल को खराब करेगा, आंखों से भी आएगा हाथ से भी आएगा जिस्म से भी आएगा मुंह से भी आएगा, तुम्हारा क्या काम है वस्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून, कसरत से मेरा जिक्र करना कुल शयइन सकीलतन सकीलतल कल्ब जिक्रुल्लाह वल्लाही फातिह कि कोई साबिन नहीं मिलेगा इस मिट्टी को खत्म करने वाला, इसकी तरफ ध्यान रखना हिफाजत करना अपने, एक चीज अल्लाह पाक ने दे दी है तुम्हें पूरे कुरान में ऐलान फरमाया है कि साफ किसी चीज से नहीं होगा दिल तुम्हारा, वो मिट्टी वरना जमना शुरू हो जाएगी, फिर उसकी मिसाल कि दिल की मिसाल ऐसी है कि एक गुनाह किया जमता रहता है हत्ता का ये होता है वो स्याह कोयला बन जाएगा दिल आपका। आप किसी को तजर्बा करें अपनी गाड़ी को बाहर ठहरा दें और उसके बाद भूल जाए कि आपने इसको साफ करना है, तो कोई आके आपसे पूछेगा आपने तो सफेद गाड़ी ली थी ये नीली कैसे होगी, कितनी है तो सफेद ही लेकिन नीली होगी है धोए जो कभी नहीं मैंने साफ ही नहीं की रंगी बदल गया उसका खड़े खड़े होता ही नहीं होता। आपकी विंडो को साफ करने वाला ना है तो आप देखें डस्ट पड़ जाएगी बाहर करना अंदर नजर आए वो टेन ग्लास बन जाएगा आपको मुफ्त में कोई नजर नहीं एक दूसरे को, अंदर बैठ जाए आप थोड़ी देर में देखें वो छोड़े हैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ गाड़ी तो बाहर ठहरी होती है ना आप देखें शीशे के ऊपर मकड़ी आएगी जाला बनना शुरू कर देगी होता ही नहीं होता गाड़ी के अंदर, ये सब निशानी दे रहे हैं अल्लाह पाक मकड़ी क्या जरूरत, जिस वक्त गाड़ी में बैठे तो आप देखें गाड़ी पे ये मकड़ी का जाला लग गया, यहाँ सोचता है लोग इसलिए कि मैं इसको साफ नहीं किया यकीन मेरे दिल पे भी कोई इस तरह जानवर बैठ गया होगा उसमें जाला लगा दिया होगा मैंने दिल को साफ ही नहीं किया, मैंने कितना जिक्र किया है, मैं कितना जिक्र वालों के पास बैठा, यहां तो मुकाबला हो चुका है, यहां तो हमने दीन को मुकाबला कंपटीशन में ले लिया है। अंदाजा लगना है यार कैसे इंसान है हम लोग, हमें तो यही नहीं पता कि हमारा इलाज क्या है, अल्लाह के रसूल ने हमारा इलाज क्या बताया। सारी सारी जिंदगी जिनको ये काम सुपुर्द किया गया तस्किए का मशाइख कराम, सारी सारी जिंदगी लगाते हैं कहो अपने अंदर को साफ करो, अंदर को साफ करो, अंदर को साफ करो। हर आदमी अपनी ड्यूटी दे रहा है, हदीस पढ़ाने वाले लगे हैं, हदीस सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शेखुल हदीस हैं, है या नहीं, कुरान को पढ़ाने वाले माहिरीन कुरान है जो हिस्ट्री कराते हैं, तजवीज़ भी सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तफसीर भी बताते हैं, मुफस्सिरीन है जो तफसीर बताते हैं, कुरान को लिखने वाले मौजूद हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने तज़किए के लिए इंसान को पैदा किया, वो कौन है, औलिया-ए-अल्लाह है, जिनकी मजालिस का काम ही होता है सिर्फ तो दिलों को अंदर से साफ करते हैं ताकि उनकी जिंदगी में अमल आ जाए, और वो चलना उनको दिल साफ होगा तो अल्लाह के इनामात उस दिल पर उतरना शुरू हो जाए, फिर उनकी शफकतें देखें, उनकी रहम देखें, उनकी चीजें देखें। अभी का वाकया है, कल परसों का, मैं तो जिसमें मेरा काम किया सुनने के बाद, दो लड़कों को उठाया स्कूल के लड़के, ये जंगली भी ऐसे काम नहीं करते, ये मुसलमान, आओ जी हम तुम्हें लिफ्ट देते हैं, दो लड़कों को जानने वाले थे, दो लड़कों उठाया कि आओ जी हम तुम्हें लिफ्ट देते हैं, उनको उठाया ले गए पार्क में सीधे, कहाँ ले जा रहे हो पार्क में, 25 लड़के वहां खड़े, हाथ में उन्होंने पता नहीं क्या लोहे के पहने होते थे, और वो गुड़ मुड़ सब 25 लड़कों पढ़ के शुरू हो गए मारने के, क्या हाल हुआ उनके माँ बाप का, दांत तोड़ दिए, मुंह बिगाड़ दिए, जिस्म खत्म हो गया उन बच्चों का, और जनाब कोई बच पता नहीं बच किस तरह गए किसी मामूली बात पे, 25 इंसानों ने मारा है, दो इंसानों को, वो भी मुसलमानों ने, ये भी मुसलमान, ये कल की बात है। इंसान है कोई इंसानियत, मुझे बताएं कोई इंसानियत सोच सकती है, इंसानियत हमारा मतलब इंसानियत पर है, इंसानियत पर है, इबादत तो हमें दी गई है लेकिन इंसानियत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है इंसानियत। क्या इंसाफ हो गया, क्या इंसान सोच सकता है, ये क्या है, दिल नहीं, शफकत नहीं, रहम नहीं है। जानवर 5 पाउंड पर लड़ाई होगी, 10 पाउंड पर लड़ाई होगी, या कोई छोटी स्कूल में क्या करते हैं लड़के, यंग थे, उसके इंतकाम लेने के लिए उन्हें कहा 15-25 लड़कों ने दो लड़कों को मार 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 मार, और पत्नी मुखों से और कैसे कैसे इश्तियार उनके पास थे, बड़े चौड़ों के निकल गए गाड़ी में, क्योंकि नहीं बात तो नहीं, रोज आप देख रहे हैं अखबारों में चीजें आती हैं, हमारे जेल जो भरी हुई हैं इत्तेफाक से हमारे लोग ज्यादा ही होंगे उसमें, कोई बात, दुनिया तो है गंद, हम ये नहीं कह सकते हम यहां है वहां कोई ऐसी बात नहीं, यहां है पीछे भी ऐसे हो रहे हैं काम, वहां उससे बदतर हो रहे हैं, ये वजह नहीं, वजह ये है कि जहां भी आप रहें अल्लाह सुबहान ताला ने जो तरीका बताया है कि अपने कलूब की हिफाजत करो, जिक्र को कभी ना छोड़ना, दिल बनता रहेगा रहम उतरता रहेगा, अपने तो अपने इंसान गैरों के साथ वो काम करके दिखा देगा कि इंसान के दंग रह जाएंगे कि इतने शफीक लोग हैं, इतने मेहरबान लोग हैं, इतने अजीम लोग हैं, तो ये वजह नहीं कोई पहुंचता, बीमारी की वजह पूछती है, क्या वजह है इसकी बीमारी की, समझे ना ये क्यों ऐसे हो रहा है, इसलिए कि दिल हमारे जो है वो बिगड़ चुके हैं। आज हम अपने दिलों की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह वालों के पास जाएं और कसरत जिक्र करें, उनके बताए इलाज से आप काम शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बदलना शुरू होता है और रहम और शफकत आना शुरू हो जाती है। मैं आज फिर आपसे कहूंगा, आप जिक्र करने वाली जमात है, आपको आए हो कि 2 साल को, 5 साल को, 60 साल को, 10 साल, 15 साल, मैं आपको तजर्बे की बात करता हूं कि अपनी पहली जिंदगी को इन 2 सालों के साथ मिलाए, जब आपने जिक्र किया है तब्दीली नजर नहीं आती आपको, रहम नजर नहीं आता, कभी ऐसा था कि कोई गाड़ी, आप गाड़ी पर जा रहे हैं, अंदाजा लगाए गाड़ी पर आप जा रहे हैं और गाड़ी किसी से लगी आप परवाह नहीं करते थे, आज ये मिजाज बन गया आपका कि गाड़ी हल्की से लगी कसूर अपना नहीं बल्कि उसका है, तब भी आप रुक के कहेंगे यार माजत करता हूं मैं, देख लें आप ऐसी है, ये किसने पैदा की चीज आप में, रहम अल्लाह के जिक्र ने, अल्लाह के जिक्र, वही शख्स जो लोगों को मारता था, दांत तोड़ता था, बदमाशी करता था, जब उसने अल्लाह का जिक्र शुरू किया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल झुक गए उसके कंधे, उन्हीं प्यार कर रहे लोगों को, उनसे माफी छोड़ दिया, कहते यार तू तो बड़ा जानदार था तुझे क्या हो गया, लोग उसको देखने आ रहे हैं, उसके जिस्म को देख रहे हैं, उसकी ताकत को देख रहे हैं, और वो झुके जा रहे हैं कि नहीं यार कुछ भी नहीं, देखिए ये इस्लाम की जो अल्लाह ताला ने इलाज बताया, अगर पूरी आलम इस्लाम में जिक्र फैल जाए और जिक्र को समझ जाए कि ये हमारे हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हर मर्द और औरत का एज ए मेडिसिन, जैसे सुबह और शाम खाते हैं ना कैप्सूलम, अपने शुगर वाले बीपी वाले खाते नहीं खाते, तो अगर हम समझे हम सारे दायमी मरीज हैं अखलाक के, हम में रहम नहीं, हम में शफकत नहीं, इंसानियत नहीं, हम जानवर हैं, हमें तो मौका मिलना चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे, हर चीज में पहल करने वाले के पहला मैं। अगर यहां कोई चीज बट भी रहेगी ना, नहीं पहले मुझे दो, यही आप देखने लंगर करके देख लें बाहर, कहना पड़ता है भैया आराम से जाएं, बाहर वालों को खाने दें, कहते ये नहीं कहते, ये शर्म नहीं आती जब ऐसी बातें की जाए किसी से कि भैया अभी बाद में, कि कोई कहने वाली बात है कि मेहमानों को पहले खिलाएं, आप तमीज से जाएं, शोर न मचाएं, ये जेब देता है मुसलमानों को, मस्जिद में खड़ो के ऐलान करके उनको समझाया जाए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और शक्लें देखें और मराबे देखें और हाथों में जफियों पुरानों को पढ़ते देखें और जनाब जो हरकतें करते हैं, ये कौन सा इस्लाम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत कसरत नमाज और कसरत इबादत से नहीं जाएगी, बल्कि किससे जाएगी, सलामती कल्ब से जाएगी, रहम से जाएगी। आओ अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठो दोस्तों, अल्लाह के जिक्र को सीखो बहनों भाइयों, वरना रोजे क़यामत में ये सब निकल जाएंगी चीजें जिस चीज पे तुम इतराते हो, अब हम लोग जो ऊंचे फिरते हैं कभी नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आज हम इस पे मेहनत करें, यही जवान जो आज खड़े होकर मार रहे हैं लोगों को, होश नहीं, दिमाग नहीं, उड़े हुए इनके पता ही नहीं, हर आदमी अपने आप को समझता है बड़ा हूं, क्योंकि ना बाप ने कभी अपने दिल को सही किया, ना उसके दादा ने अपने दिल को सही किया, ना उसकी माँ ने अपने दिल को सही किया, है ही नहीं पता उनके जिक्र कोई जिक्र कोई चीज होती है, पता ही कुछ नहीं, कल्ब का शोर ही नहीं उनको सिवाय खाने पीने के, वो अंदर जहर पैदा हो रहा है उनके अंदर, और ऐसी ऐसी चीजें फिर निकलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर, माशरे को जो तबाह कर दिया। और जब दुनिया गैर मजाहब के लोग कुरान को खोल के पढ़ते हैं उसकी तालीम और हमारे करेक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ, वो कहते हैं ये क्या है, वजह यह है कि कोई समझा ही नहीं, सुनी ही ना, पता ही नहीं चलता है या नहीं, बात कितने अहम चीजें अल्लाह का जिक्र और कितनी अच्छाई की तरफ लेके जाता है, क्या है हमारी जिंदगी, हम हैं क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं एक दफा, अब मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं, पता फक्कल है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि लोगो जो हमारी मस्जिदों में से आए या मस्जिद से गुजरे, हमारे बाजारों में आए या बाजार से गुजरे, ये हदीस के लफ्ज हैं, जो हमारे मस्जिदों में आए या मस्जिद से गुजरे, जो बाजारों में आए या बाजार से गुजरे, और उसके हाथ में अगर तीर हो, तीर हथियार होता है ना, एरो जिसको कहते हैं, तीर होता था जिसके आगे लगा होता है भी वो लोहे का कुछ लगा होता है मारने के लिए, अगर किसी के हाथ में तीर हो तो याद रखो जिसके हाथ में वो तीर है, जिसके पास है, वो बहुत मजबूती से उसका अगले हिस्से को काबू करके रखे, छुपा के रखे, ऐसा ना हो कि किसी को ये तकलीफ पहुंचा दे। ये कौन सी इबादत सिखा दी अल्लाह के नबी ने, ये कौन सा कुरान पढ़ के बता दिया, ये क्या चीज थी जो सिखा दी, सोचें जरा कितना डीप मजहब सिखाया, यानी इतना कीमती चीज है इंसान, इतनी इकराम है एक इंसान का दूसरे इंसान के, तेरी किसी चीज से ऐसा गलती से उसको टच भी ना हो जाए, ये बहुत बड़ा गुना हो जाएगा, तो अल्लाह को नाराज कर देगा इससे, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाकर, ये तो बहुत मामूली चीज, क्या बताएं, ये क्यों बता, देखिए आप अल्लाह के नबी बता रहे हैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस, सही कितनी एहतियात, नबी एक दूसरे बैठे किसी अजबे का, अब मैं आपको एक वाक़ा मेरे जहन में आ रहा है, दिल थाम के सुनिए इस वाक्य को, मगर ईमान का अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा होगा तो आंखें तर हो जाएंगी इस वाक्य के बाद, एक मोमिन और मोमिनात की, कोई वक्त था जंग का था या गजबा थी हुई ऐसी, आप सरसों किसी ऊंची जगह पर बैठे हैं कुर्बान जाऊं, आपके हाथ में एक छड़ी मुबारक है, साहबा काम गुजर रहे हो, रशिया नक्शा खींच रहा हूं आपके सामने गुजर रहे, आप तशरीफ रखते हैं ऊंची जगह पर, पांव अपने ऐसे रखे हैं फैलाए हुए, पांव शरीफ, हाथ में छड़ी ली हुई है, एक साहबी है बड़े उसमें जा रहे हैं, जंग का मौका था, बड़े अपने हिसाब से निकल रहे हैं, हर साहबी मूठ के साथ जा रहे हैं, लिबास पहना हुआ है उन्होंने, लोहे का लिबास था, किसी लोहे की ओत पहनी थी, किसी ने लोहे के जूते पहने हैं, जो होता है फौजियों के लिबास जैसे उस जमाने के थे, और तेजी के साथ हफ जा रहे थे। उसमें एक साहबी थे, वही गुजर रहे हैं, जाहिर इतनी चीजें पहनी हुई हैं, सब कुछ है, आदमी तो लड़खड़ा तक थोड़ा हो ही जाता ना, ऐसा आम नबी समझते, बैठे हुई जगह पे तो जो पास से गुजरा उसका जो पांव था साहबी का, उसके जूते के नीचे कीलें लगी हुई थी, आप सब सुन के खूबसूरत प्यारे हसीन पांव से टच हो गया। कुर्बान जाए मेरे माँ बाप आपके काम कदमों पे कुर्बान जाए, क्या हसीन प्यार थे मेरे प्यारे नबी के सरसों के, आपके पांव उस पर कुछ नहीं था उसमें पहना हुआ, वो कील लगी, जब कील लगी पांव में तो जाहिर कितना दर्द हुआ वो नबी पाक को, एकदम खून का फवारा बना, खून निकलना शुरू हो गया, साबित वहीं दंग हो गया। तो इतनी तकलीफ हुई नबी पाक को, आपने फिर भी मुस्कुराते हुए अपनी छड़ी से ना उसको ऐसे मारा, हाथ से छड़ी को ऐसे कमर पे मार दिया और कहा तुमने मुझे बहुत सख्त तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ पहुंचाई, ऐसे क्या दिया, मौत खत्म हो जाती, दिन बना, अल्लाह की फसल देखिए रहम और शफकत का क्या मजा नजर आएगा आपको। वो साहबी आशिक रसूल, उसकी तो जिंदगी वहीं बर्बाद, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन, अब आप देखें क्या होता है, साहबी चल तो पड़ा वहां से, अबू तो नबी पाक से पट्टी बांधेगी, खून टपकरा इसी तरीके से, वो अपने खेमे में चला गया, दिन का आधी वक्त था, सर पकड़ के बैठ गया, सब कुछ लिबास उतार दिया, सजदे में गिर गया और रोना शुरू कर दिया उसने, ये मुझसे क्या हो गया, हालांकि जानकर तो उसे नहीं किया, अल्लाह ताला सोच रहे अब जिबरील अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, अल्लाह ताला किस कदर शदीद मुझसे नाराज हो चुके होंगे, हाँ ये मुझसे क्या हो गया मेरे महबूब, मैंने अपने आखिर के साथ ये क्या जुल्म कर दिया, कितनी तकलीफ होगी, चुर्रा रहा है, चीख रहा है, शाम हुई, रात हुई, सारी रात रोता रहा, कांपता रहा, डरता रहा कि पता नहीं अब क्या, ये तो वो नबी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऊंची आवाज भी कोई करेगा इनके सामने तो मैं बहुत सक्सेस दूंगा, तो मेरे साथ तो बड़ा, मैंने तो बहुत कुछ किया है, पता नहीं मेरा क्या फैसला उतरने वाला है, अब मैं राजी अपने में, यानी दो तरफ से कश्मीर से, वो तो अल्लाह ताला के अजाब से डर, उस नबी पाक की तकलीफ से उसको सदमा, वही जान सकता है जो आशिक सही हो, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पलवन उसकी रात दूसरा दिन चढ़ा, ये कैफियत बंद पड़ा है, ना खाना ना पीना कुछ अपने खेमे के अंदर, बुरा हाल उसका, रो रो के आंखें सूज गई, हाल खराब हो गया, शाम ढली तो आवाज आई हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि भाई वो सहाबी किधर है जिसने नबी पाक ने पांव पे जख्म किया था, पांव टकराया था उससे, उसके कान में जो आवाज है उनके लुभे, अब तुम्हारे अब मेरी सजा उतर आई, अब तो पता नहीं मेरे पर क्या सजा होगी और क्या अजाब उतरेगा अल्लाह ताला का। वो बाहर निकले कांपते कहा बिलाल मैं ही था, वो कहते चलो तुम्हें बुलाया जा रहा है नबी पाक दरबार में, चलो चलो, तो मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे, बताते सारे किस तरीके से मैं पहुंचा मैं नहीं बता सकता, मैं डरते 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 जब आपके खेमे में गया तो आप मुझे देखा कर इधर आ जाओ, मैं आगे बढ़ा, नाजी अब क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या अल्लाह ताला ने मेरे लिए अहकाम जारी फरमा दिए होंगे, कहते मैं जाकर बिल्कुल खामोश खड़ा हो गया, तो नबी साहब ने मैं चेहरे वाले को देखते हुए डर रहा था, तो मैंने कनखियों से देखा तो आप मुस्करा रहे थे, शफकत देखे आप देखें शफकत, आगे सुने जा, मैं सोचूं कि मैं किस तरह माफ़ी मांगूं, क्या कहूं, अभी मैं अल्फाजों की तरफ तवज्जो कर रहा हूं तो उधर से नबी हमें इरशाद फरमाया कि तुम खैरियत से हो, कि मैं या आप, कहते तुम, कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कहते मैंने छड़ी जो मारी थी तुझे, मैं सारी रात बेकरार रहा कि तेरी छड़ी मैंने क्यों मार दी, नज़र ने तुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, हदीस के लफ्ज़ है, सुभान अल्लाह, कहते पता नहीं तुझे कितनी तकलीफ होगी, मेरे हाथ से क्यों छड़ी उठ गई, तो यार सो मुझे तो याद भी नहीं आपने मुझे मारी, कहता नहीं मुझे याद है मैंने तुझे छड़ी मारी थी, और वो कहता है साहब मैं देख रहा हूँ आपके पांव से अभी भी खून टपक रहा था, तो कहने लगा कि मेरी चीखें छूट गई, कहता तुझे कहाँ तकलीफ हुई थी, तो यार सो मुझे कुछ तकलीफ नहीं, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, तकलीफ तो मैंने आपको पहुँचाई है, कहते नहीं करीब आओ करीब आए, कहता कमीज उठाओ मैं देखना चाहता हूँ कहीं निशान तो नहीं बन गया उस शरीर का, कोई जख्म तो नहीं हो गया तुझे, तो फरमाया उठा कर देखा, अब मुझे सीधा खड़ा किया, कहते मेरा दिल करता है तो मेरे सीने के साथ लग जा, हाय हाय, वो नबी उम्मे रहमत
लकब पाने वाला उन नबियों में रहमत, लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरनाने वाला, उन नबियों में रहमत लकब पाने वाला मुरादे गरीबों की बरनाने वाला, मुरादे गरीबों की बरनाने वाला उन नबियों में रहमत लकब पाने वाला। उतर कर हेरा से सुए कौम आया, उतर कर हेरा से सुए कौम आया, वो एक मुस्काए की मियाँ साथ लाया, वो एक मुस्काए की मियाँ साथ लाया। वही तो छोड़ दिया हमने, उसको तो छोड़ दिया, अल्लाह के नबी जो हमें कुरान जो दिया उसको हमें छोड़ दिया, ना हमें पता ही नहीं, जो इलाज बताने वाली चीज़ है, जो हमें समझाने वाली चीज़ है, वो हमारे जहनों से निकल गई, हमारे रूह से निकल गई, हमारे हाथ से निकल गई, एक सती मज़हब हमारे पास आ गया। मेरे भाइयों, किस नबी की उम्मत है अपन लोग, क्या शफकत, क्या रहमत, क्या तालीम, आप ये देखें जो अल्लाह के नबी ने फरमाई, वो सोच सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे दिलों को भी हम बहुत रहम से फुल कर दे, शफकत से फुल कर दे। मेरे भाइयों, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। कितनी मोहब्बत एक मोमिन को अपने नबी से होती है, आप क्या समझते हैं? हर एक को है, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को है, लेकिन करीब होने के लिए वह अखलाक इंसान बना ले, वह अखलाक बना ले, उस अखलाक की तरफ चलना शुरू हो। वो कब तक नहीं हो सकते, वो हो ना सकते जिस वक्त तक इंसान उस पर मेहनत नहीं करे। हमने कभी अपनी गर्द, अगर गर्द को और गंद को नहीं निकालेंगे अपने कल्ब से, तो कल्ब से कभी साफ नहीं होगा। लाजिम कर लें अपने आप पर सुबह और शाम का जिक्र, रात को गंद हमारे जिस्म पे आए, गंद आए तो सुबह अल्लाह का जिक्र करके उसको साफ करते हैं। सुबह जो आए शाम तक जो सुबह गर्द जमा होती रहे, क्योंकि दुनिया हमने फिरना है, हम इंसान हैं, काफी गंद जमा हो जाता है इंसान से, शाम को आए अल्लाह के जिक्र में बैठे उसको साफ करते हैं। अल्लाह जिक्र अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दे दी है, उसका शुक्र शुक्र करोड़ों बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक तौफीक दी है। और अपने आप को हमेशा जांचते रहें, हम लोग पहचानते रहें कि हम किस स्टेजेस पे खड़े हैं इस वक्त, हमें किस वक्त मौत आ सकती है, क्या कमी हमारे में है, उस कमी को हम कैसे दूर करें। ये हमारे ये बदतमीजी क्यों हमारे से होती है, जबान हमारी क्यों गंद हो जाती है, किसी पर हमें रहम क्यों नहीं आता है, किसी शफकत क्यों नहीं आती, हमें कुर्बानी का जज्बा क्यों खत्म हो गया, हम हर इंसान क्यों नहीं कहते कि तू पहले कर ले मैं बाद में कर लूंगा, तू पहले ले मैं बाद में ले लूंगा। तुझे शैतान क्यों कहता है कि तेरी बारी आएगी तो चीज़ खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाए, लेकिन इनाम कितना बड़ा इंसान ले लेगा, ये तो देखिए, भुगतान ही अल्लाह में मारेगा, उससे बेहतर तुम्हें चीज़ अता फरमाएगा। ये उस वक्त होगा जब दिल हमारा नरम हो जाएगा, अल्लाह के जिक्र से पिघलता चली जाएंगी सारी चीज़ें, उसमें निकलती चली जाएंगी, और कोई वजह नहीं दोस्तों। ये सूफियों की तालीम है, सूफियों ने इसी को फैलाया है, यही उनका मकसद है, बजरिए जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया को जगाते हैं। अल्लाह वाले लोग सूफी हज़रत पूरी दुनिया को जगाते हैं, अपने आप को सही करो, अपने अंदर को सही करो। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और आपकी तौफीक।